नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारतीय उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, LVMH मोएट हेनेसी के सह संस्थापक और अध्यक्ष बर्नार्ड अर्नोल्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, लेकिन अब फिर से गौतम अडानी तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और बर्नार्ड अर्नोल्ट दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। शुक्रवार सुबह फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार गौतम अडानी और उनके परिवार की कुल संपत्ति शुक्रवार को 155.4 अरब डॉलर हो गई थी, जबकि बर्नार्ड अर्नोल्ट की संपत्ति 155.2 बिलियन डॉलर हो गई थी। इस तरह से गौतम अडानी ने बर्नार्ड अर्नोल्ट को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन करीब 3 घंटे बाद दोनों उद्योगपतियों की संपत्ति में गिरावट हुई और गौतम अडानी की संपत्ति 152.5 अरब डॉलर हो गई, जबकि बर्नार्ड अर्नोल्ट की संपत्ति 152.9 बिलियन डॉलर हो गई। इस प्रकार से गौतम अडानी फिर से तीसरे नंबर पर आ गए। दवा कंपनी मैनकाइंड फार्मा ने IPO के जरिए पूंजी जुटाने के लिए सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कराए हैं। दस्तावेजों के अनुसार IPO के तहत कंपनी के प्रवर्तक मौजूदा निवेशकों और शेयर धारकों की 4,58,884 इक्विटी शेयर की बिक्री पेशकश भी शामिल है। OFS में रमेश जुनेजा और राजीव जुनेजा क्रमशः 37,05,443 और 35,05,149 शेयरों की बिक्री करेंगे, जबकि शीतल अरोड़ा द्वारा 28,04,119 शेयरों की बिक्री की जाएगी। इसके अलावा केयरनहिल CIPEF द्वारा 1,74,05,559 शेयर, केयरनहिल CGPE द्वारा 26,23,863 इक्विटी शेयर, बेज लिमिटेड द्वारा 99,64,711 शेयर और लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा 50,000 शेयरों की बिक्री की जाएगी। कंपनी को प्रस्ताव से कोई आय प्राप्त नहीं होगी। दस्तावेजों के अनुसार अभी आय बिक्री करने वाले शेयर धारकों को मिलेगी। कंपनी के शेयरों को BSE और NSE में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। देश में घरेलू उड़ानों के यात्रियों की संख्या अगस्त में जुलाई की तुलना में 4% से अधिक बढ़कर 1.01 करोड़ हो गई। जुलाई में 97.05 लाख यात्रियों ने घरेलू उड़ानों से सफर किया था। नागर विमानन महानिदेशालय ने शुक्रवार को ये जानकारी देते हुए कहा, इस साल जनवरी से अगस्त के दौरान कुल 7.70 करोड़ लोगों ने घरेलू उड़ानों के जरिए यात्रा की। इसमें सालाना आधार पर 67.38% और मासिक आधार पर 50.96% की वृद्धि हुई है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की घरेलू बाजार में अगस्त के दौरान हिस्सेदारी 57.7% रही, जो जुलाई में 58.8% थी। DGCA के आंकड़ों के अनुसार विस्तार की आलोच्य माह में कुल घरेलू यात्रियों की संख्या में हिस्सेदारी 9.7% रही, जो जुलाई में 10.4% थी। देश की नई एयरलाइन आकाश ने इस दौरान घरेलू बाजार में 0.2% बाजार हिस्सेदारी हासिल की। कंपनी ने 7 अगस्त को परिचालन शुरू किया है। एयर एशिया समय पर प्रदर्शन के मामले में पिछले महीने शीर्ष स्थान पर रही, जबकि विमानों में सीटों के मुकाबले क्षमता उपयोग स्पाइस जेट में सबसे अधिक 84.6% का रहा। JMR इंफ्रास्ट्रक्चर ने शुक्रवार को कहा कि उसके गैर हवाई अड्डा कारोबार के पृथक हो जाने के बाद कंपनी का नाम बदलकर GMR एयरस्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो गया है। कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में ये जानकारी देते हुए कहा, कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी और नियामकीय स्वीकृति मिलने के बाद नाम में परिवर्तन 15 सितंबर 2022 से प्रभावी हो गया है। कंपनी ने अपने हवाई अड्डे से इतर कारोबारों को GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड में मिला दिया गया था। इस तरह अब उसके पास मुख्य रूप से सिर्फ हवाई अड्डा परिचालन का ही कारोबार रह गया। फिलहाल GMR एयरपोर्ट्स दिल्ली और हैदराबाद हवाई अड्डों के अलावा फिलीपींस में सेबू हवाई अड्डे का भी परिचालन कर रही है। इसके अलावा उसे इंडोनेशिया के मेडन में स्थित कुआला नामू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास एवं परिचालन का भी अनुबंध मिला है। इसके साथ ही GMR एयरपोर्ट्स गोवा और भोगपुरम के अलावा यूनान के क्रेते में भी नई हवाई अड्डों के विकास में लगी हुई है। ईडी ने शुक्रवार चीनी लोन ऐप्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने बताया कि इस सप्ताह छापेमारी के बाद इसबज, रेजरपे, कैशफ्री और पेटीएम के वर्चुअल खातों के जरिए जमा 46.67 करोड़ रुपयों को जब्त किया गया। ईडी ने जानकारी दी कि ईबज प्राइवेट लिमिटेड पुणे के पास कुल 33.36 करोड़ रुपए, कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर के 1.28 करोड़ रुपए, रेजर पे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु के 8.21 करोड़ रुपए और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड नई दिल्ली के साथ 1.11 करोड़ रुपए जब्त किए गए। ये पैसे वर्चुअल खातों के जरिए जमा किए गए थे। बता दें कि 14 सितंबर को दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, लखनऊ और गया में मामले से जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी की गई थी। इसमें जांच के संबंध में दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बेंगलुरु में बैंकों और भुगतान गेटवे के 16 ठिकानों को भी कवर किया गया था। बता दें कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अक्टूबर 2021 में नागालैंड में कोहिमा पुलिस की साइबर अपराध इकाई द्वारा दर्ज किया गया था। बीज, कीटनाशक जैसे कृषि उत्पाद बनाने वाली कंपनी यूपीएल ने एक साथ सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी क्लीन मैक्स के साथ गठजोड़ किया है। कंपनी इस संयंत्र से उत्पन्न बिजली का उपयोग स्वयं करेगी। यूपीएल ने शुक्रवार को बयान में कहा कि कंपनी क्लीन मैक्स के साथ मिलकर गुजरात में एक ही स्थान पर सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए समझौता किया है। इसमें सौर बिजली इकाई की क्षमता 28.5 मेगावाट और पवन ऊर्जा परियोजना की क्षमता 33 मेगावाट होगी। कंपनी ये संयंत्र खुद के इस्तेमाल के लिए लगा रही है। इस परियोजना से यूपीएल के वैश्विक स्तर पर खपत होने वाली कुल बिजली में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 30% हो जाएगी, जो फिलहाल 8% है। यूपीएल के वैश्विक सीईओ जय श्रॉफ ने कहा, हम देश के हरित ऊर्जा विस्तार में शामिल होकर काफी उत्साहित हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।